शांति आज हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी विराजमान है। हम रूहानियत के इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत सत्कार अभिनंदन वंदन नमन। आप हर की पौड़ी है, विद्या की देवी सरस्वती आपके जीवा पर सदा विराजमान है। ऐसे सुंदर वरदानों से जिन्हें स्वयं भगवान ने सजाया है, ऐसी हमारी शीलू दीदी वर्तमान में राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं और वाइस चेयरपर्सन, और इस मधुबन आंगन में पांडव भवन के आंगन में पूरे ही वर्ष भर में जो भी ज्ञान योग के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बाबा की सीजन में विदेशी भाई बहनों के ज्ञान योग के प्रोग्राम और बाबा की सीजन के बाद भारत के भट्टियों के प्रोग्राम, तो जितने भी ज्ञान योग के प्रोग्राम इस कैंपस में चलते हैं उसके कोऑर्डिनेटर हैं। और मुख्य जो आपका पार्ट है वर्तमान में, चूंकि हम जानते हैं दादियां सभी अव्यक्त हो चली हैं, मम्मा बाबा अव्यक्त हो गए हैं, लेकिन आपका ये सौभाग्य रहा कि मुंबई में रहते ही स्वयं ब्रह्मा बाबा की गोद में अलौकिक जन्म भी हुआ और साकार बाबा दादियों की पालना मिलती रही। तो जो पालना आपने बाबा से, मम्मा से, दादियों से प्राप्त की है, उसी पालना का रिटर्न आने वाले ब्राह्मण परिवार को देना, ये आपकी वर्तमान में मुख्य सेवा है। बाकी यूं तो बहुत सेवाएं चलती रहती है, जैसे कि ट्रांसलेशन की सेवा, अव्यक्त बाप दादा के लाइव ट्रांसलेशन इंग्लिश में। और आज जो हम मीडिया 24 घंटा हम देखते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसकी खुद की चैनल्स है, लेकिन शुरुआती बीज तो एक होता है, तो मीडिया में सबसे पहले कोई ब्रह्मा कुमारी, अगर ब्रह्मा कुमारियों को रिप्रेजेंट किया तो उसमें किसका नाम आता है सबसे पहले? शीलू दीदी का। राजयोग शिविर जो मधुबन में होते हैं, हाँ, वो सबसे पहले शीलू दीदी की देन रही। तो यूं तो बहुत सेवाएं करते हैं, लेकिन दादी जैसा पार्ट प्ले करना, वो आज वर्तमान में आपकी सेवाएं हैं। अधिक न कहकर हम सुनेंगे दीदी से आज के विषय पर, परिवर्तन की विधि। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम है और वो नियम है परिवर्तन। मैनेजमेंट में ये बताते हैं कि संसार में सब कुछ परिवर्तित होता है, केवल एक शब्द परिवर्तन ये परिवर्तित नहीं होता है, हाँ, क्योंकि है ही परिवर्तन, ये शब्द परिवर्तित नहीं होता है, बाकी सब परिवर्तित होता है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और प्रकृति का परिवर्तन के साथ दूसरा क्या नियम है कि हर चीज क्षणे क्षणे क्षीण होती जाती है, जिसको कहेंगे कि सतो से रजो, रजो से तमो होती जाती है। ये भी प्रकृति का नियम है, और ये परिवर्तन कोई लाता नहीं है, अपने आप होता है, क्योंकि परिवर्तन है ही प्रकृति का नियम, तो ये अपने आप होता है। जैसे गिरना अपने आप होता है, चढ़ना उसमें मेहनत होती है, तो गिरने के लिए प्रकृति के अंदर ये परिवर्तन शक्ति है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके आधार से हर चीज ऊपर से नीचे आती है। उसके लिए विज्ञान में दिखाते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं तो बताते हैं कि साइंस का जो फादर था, फादर ऑफ साइंस न्यूटन उसका नाम था, तो वो एक दिन सेब के एप्पल ट्री के नीचे बैठा था, तो अचानक वो एक सेब ऊपर से नीचे गिरा, उसके पास गिरा। तो उसके मन में प्रश्न उठा, ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर जाना चाहिए ना, नीचे क्यों गिरा? तो वो कौन सी शक्ति है जो ऊपर से नीचे ले आती है? तब उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसका इसको डिस्कवर किया, ये प्रकृति की चीज है। तो नीचे आने के लिए मेहनत नहीं है, क्योंकि हर चीज बाबा कहते सतो रजो तमो में आती है। आज भी बाबा ने कहा ना, सतयुग से तुम कैसे नीचे आए, कलयुग अंत तक आए। तो फिर कई लोग प्रश्न करते हैं, आज ही मुरली में था ये, कि अगर नीचे आना ही है तो ऊपर चढ़ने की मेहनत ही क्यों करें, नीचे ही तो आना है फिर से। लेकिन मेहनत करनी चाहिए ऊपर जाने की या नहीं, नीचे ही रहें, क्या करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए मेहनत। लेकिन उसमें ये भी, उसको कहते एंट्रोपी, इंग्लिश में कहते एंट्रोपी, हर चीज ऊपर से नीचे आती है, गिरती कला है। और जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स न मिले तब तक वो नीचे गिरती जाएगी, और जैसे ही उसको एक्सटर्नल फोर्स मिला वो ऊपर चढ़ सकती है। परंतु वो बाहर से शक्ति चाहिए, ऐसे ही नहीं शक्ति आएगी, वो बाहर से शक्ति चाहिए। है उसके अंदर शक्ति, लेकिन उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जिससे वो अंदर की शक्ति को आगे बढ़ाए। जैसे हनुमान के लिए दिखाते ना कि हनुमान के अंदर बहुत विशेषताएं थी, लेकिन जब तक उसको कोई ये बताए नहीं कि तुम्हारे अंदर ये विशेषता है, तब तक उसको स्मृति में नहीं था। तो जब संजीवनी बूटी लानी थी तो हनुमान को कहा, अरे हनुमान तुम तो उड़ भी सकते हो, तुम तो क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर उड़ने की शक्ति है, हाँ पवन पुत्र है तो पवन माना हवा, तो आप तो उड़ सकते हो, और उड़ करके आप हिमालय में जाओ और संजीवनी बूटी ले आओ। तो उसको याद आया, अरे मैं तो उड़ सकता हूँ। तो जब तक किसने याद नहीं दिलाया था तब तक वो उड़ाने। तो इसीलिए तो जब तक हमें कोई स्मृति न दिलाए तब तक हम नीचे ही जाते रहेंगे। कोई बाहर का फोर्स हमें हमारी शक्ति को जगाए। हाँ, जैसे बैटरी है तो बैटरी के अंदर भी क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, मैं भी साइंस की छात्रा रही हूँ, तो बैटरी के अंदर कैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो क्योंकि अंदर जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ये आयोन्स होते हैं, तो धीरे 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 वो जो पॉजिटिव आयन्स है वो नेगेटिव के पास आते जाते हैं, और नेगेटिव के पास आने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। फिर उसको जब चार्जर मिलता है और बिजली मिलती है तो क्या होता है, वो वापस उस पॉजिटिव पोल पर आते जाते हैं, वापस वो शक्ति है सब अंदर ही, लेकिन उसको बाहर की शक्ति चाहिए ताकि वो वापस अपने ओरिजिनल स्थान पर आ जाए। अब ये है प्रकृति का नियम। तो अगर इसको हम बेहद रूप में देखें तो वो भी ऐसे ही है। सतयुग में हम कितने ऊंचे थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे, कितने पूज्य थे, लेकिन क्षण क्षण कैसे 16 से 14 कला हुए, 14 से 12, 8, रवि बाबा कहते कोई कला नहीं रहे, लेकिन फिर से कला चाहिए, फिर से उस 16 कला तक पहुंचना है, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? स्वयं शिव बाबा, वो आकर के हम आत्माओं में वो शक्ति भरते हैं। लेकिन कैसे शक्ति भरते हैं? कोई चीज नहीं है जो भरते हैं, है अंदर ही, लेकिन कैसे भरते हैं? याद दिलाते हैं, स्मृति, जिसको बाबा स्मृति कहते हैं, तो वो स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कौन हो, जो रोज चाहे साकार मुरलियों में चाहे अव्यक्त मुरलियों में, बाबा की मुरलियों में हमें कोई ना कोई स्वमान मिलता है। ये स्वमान जो बाबा देते हैं, ये हमारी जो आंतरिक शक्ति उसको जगाने की विधि है, जिसके आधार से हम पहचान जाते हैं हम कौन है। दादी जानकी जी की ये विशेषता थी, 3 बार ओम शांति कहकर क्या कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, इतने नशे से कहती थी मैं कौन। तो ये स्मृति आना, ये पहला कदम है वापस से, वापस उत्थान की ओर जाने लिए। तो वो कोई शक्ति बाहर से नहीं आएगी, लेकिन है तो आत्मा में, पर वो शक्ति की जागृति चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, अब मर थोड़ी गया है, पर सोया हुआ है, तो इसको कोई जगाए तो जाग जाएगा, मर जाए तो खत्म, फिर तो जागेगा नहीं। तो एकदम मर नहीं जाती आत्मा, तो चेतन है, मरती तो है नहीं, परंतु उसको कोई जगाए। जैसे दीवा बाबा कहते हैं ना, एकदम जाके उझाई जाती है, जरा सी लीक बच गई, क्योंकि घृत खत्म हो गया। अब जैसे घृत डाला क्या होता है, घृत डालते ही वो ज्योति फिर से जगती है। तो घृत तो ज्योति तो थी, लेकिन घृत नहीं था, तो इसीलिए शक्ति खत्म होती गई। तो बाबा हम बच्चों को कैसे परिवर्तन लाते, अभी तो तक जो परिवर्तन था वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ था, अब नेगेटिव से पॉजिटिव तक फिर परिवर्तन जरूरी है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव परिवर्तन के लिए क्या करना होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव में परिवर्तन कैसे हुआ है? तो शुरुआत तो सोच से ही है, फिजिकली तो अपने आप होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रीति से सतयुग से त्रेता तक फिर भी चलो भले 14 कला हुआ प्रकृति का स्वरूप, लेकिन आत्मा तो फिर भी सतो तो थी ना, आत्मा तो फिर भी शक्तिशाली थी, कोई दुख नहीं था, कोई अशांति नहीं थी, कोई विकार नहीं थे। लेकिन द्वापुर जैसे हम कहते हैं, तो द्वापुर आया और परिवर्तन हुआ, वो ट्रांजिशनल परिवर्तन एक होता है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशनल परिवर्तन, धीरे 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 धीरे, जैसे सुबह से रात होती है धीरे 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 होती है, पता भी नहीं चलता है सुबह से रात हो गई, लेकिन रात से सुबह होने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, क्योंकि सूर्य आता है, सूरज उदय होते ही दिन शुरू होता है, धीरे धीरे नहीं होता है, 24 घंटे नहीं लगते हैं फिर से सूर्य उदय, सूर्य मना सुबह होने में, बस फटाफट रात से सवेरा हो जाता है। तो आध्यात्मिक परिवर्तन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ द्वापुर से, तो कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले हमारी सोच से शुरू हुआ, इट बिगैन विथ योर थॉट्स, परिवर्तन हुआ सोच, और कौन सी सोच आई जिससे परिवर्तन हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, पवित्र से अपवित्र हो गए, आत्माभिमानी स्थिति खत्म। सतयुग त्रेता में आत्माभिमानी स्थिति स्वाभाविक थी, परंतु द्वापर युग में सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ, हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ, जो आत्मा के बजाय खुद को देह देखने लगे। सब धर्मों में ये है, पता है, केवल बाबा के ज्ञान की बात नहीं, सब धर्मों में है। आप फर्स्ट टेस्टामेंट देखेंगे क्रिश्चियनिटी में, चाहे इस्लाम में, तो उसमें बताते हैं कि परमात्मा ने, गॉड ने एडम और ईव को रचा, लेकिन एडम और ईव को एक बात बहुत ध्यान पर दी कि वो एक फल है, उसको खाना नहीं है, फॉरबिडन फ्रूट। तो जब तक वो नहीं खाया तब तक वो तो पैराडाइज में थे, मौज कर रहे थे, बहुत सुख था। पर एक दिन शैतान आया, सैटर्न बोलते हैं, वो सैटर्न कहते हैं, तो उसने ईव को कहा कि अरे ये फल तो बहुत मीठा है, आप खाओ, बहुत मीठा है ये तो, भगवान ने ऐसे ही आपको कह दिया, पर ये खाओ, कुछ नहीं होगा। अब ईव कहाँ से लाए, वो फल तो पेड़ पर था, तो एडम को कहा कि आप वो फल ले आओ। तो ईव ने एडम को कहा, एडम वो फल लाया और दोनों ने खाया, और जैसे ही खाया तो उनको पता चला, अरे हम तो नग्न हैं, क्योंकि कपड़े तो होते नहीं थे उस समय, वस्त्र तो कोई पहनते नहीं थे, ऐसे बताते हैं। तो जैसे पता चला हम वस्त्रहीन हैं, तो तुरंत काम वासना की शुरुआत हुई। पर कैसे शुरू हुई, सोच से। और जैसे ही काम वासना आई अंदर सोच से और वो कामातुर हो गए, तो फिर बताते हैं कि परमात्मा ने उनको श्राप दिया। ये फर्स्ट टेस्टामेंट में आता है। भगवान ने क्या श्राप दिया, कि आपने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, आप आज्ञाकारी नहीं बने। अब इसके लिए आपको श्राप देते हैं, कि स्त्री को श्राप दिया, ईव को श्राप दिया, कि आप 9 मास गर्भ धारण कर बच्चे को कष्ट पा करके बच्चे को जन्म लेगी, क्योंकि विकार से पैदा हुआ। और ई और एडम को श्राप क्या दिया, कि आप उसके लिए खून पसीना एक करके कमाई करेंगे और पत्नी को बच्चे को खिलाएंगे। तो उसको तो बच्चा पैदा करना है, और वो भी काम वासना से, भोग बल से, और उसको काम दिया कि परिश्रम करके आपको बच्चे के लिए, पत्नी के लिए कमाना है। तो देखो बाबा भी क्या कहते हैं, इस संगम युग पर हम जो कमाई करते हैं वो सत्युग त्रेता तक चलती है, 2 युग चलती है। इसीलिए वहां पर सत्कर्मों का फल है, जो संगम पर हम सत्कर्म करते हैं वो फल खाते हैं 2 युग तक। लेकिन जैसे द्वापर युग शुरू होता है, वो सत्कर्म तो मनुष्य भूल ही जाते हैं। सतयुग में अकर्म होते हैं, जिन अकर्मों से सत्कर्म हमारे पूरे होते जाते हैं, पूरे होते जाते हैं ना। तो इसीलिए जैसे द्वापर शुरू हुआ, कर्म में परिवर्तन आ गया, और केवल पाप और पुण्य, ये 2 प्रकार के कर्म ही रह जाते हैं। इसलिए दुनिया में यही शब्द कहते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्कर्म क्या है, अकर्म क्या है, तुमको पता ही नहीं है, क्योंकि 4 प्रकार के कर्म तो है। तो ये पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो द्वापर से ये पाप और पुण्य कहना शुरू होता है, क्योंकि कर्म करना पड़ता है। परंतु अधिकतर तो चलो पाप कर्म इतने न भी होंगे, फिर भी पाप तो होते हैं ना, और उसका फिर दुख मिलता है, तन का रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी, संबंधों में अनबन, ये सब शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है 4 प्रकार का सुख और 4 प्रकार का दुख, कोई भी चारों में एक की कमी है तो दुख, और चारों है तो सुख, अंतर है। तो बाबा कहते हैं कि अब हमको वापस परिवर्तन करना है, जो एकदम नीचे पहुंच गए तो वापस परिवर्तन करना है, वापस उस स्थिति तक पहुंचना है। तो कहां से शुरू करेंगे? कर्म से शुरू करेंगे, वचन से शुरू करेंगे, या सोच से शुरू करेंगे? सोच से, क्योंकि बीज तो हमारी सोच है ना, इसलिए माइंड। तो भगवान हमारे मन को बदलते हैं, इसीलिए बाबा तन पर इतना ध्यान नहीं देते। आजकल तो दुनिया में जो योग सिखाते हैं तन पर ही ज्यादा देते हैं, अष्टांग योग कहते हैं, उसमें यम नियम का तो कोई वर्णन ही नहीं करता है। जो मुख्य पहले दो नियम है, यम और नियम, ये जो नियमों की पालना है, अगर वो किसी को कहो तो वो योग के सीखने के लिए आगे ही नहीं आएगा। लेकिन जब उनको कहते आसन है, प्राणायाम है, बस वो दो सीखेंगे। अभी योगा डे पर भी क्या हुआ, बस ये आसन और प्राणायाम बस। लेकिन उसके बाद है, आसन प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, माना विड्रॉल, शरीर से न्यारा बन जाना, विड्रॉल, विड्रॉल। और फिर उस पे न्यारा बनने के बाद फिर है ध्यान, ध्यान करना, एकाग्रता लाना, और फिर जीवन में धारणाएं, और फिर समाधि। ये अष्ट आठ अंग है, लेकिन योगा डे पर केवल दो को ही महत्व देते, जहां भी जाओ आसन और प्राणायाम बस यही सिखाते, बाकी तो छह तो भूल ही जाते, यम नियम। और यम नियम के अंदर ब्रह्मचर्य पालन और शुद्ध शाकाहार भोजन, सत्संग, ये जो भी हम बताते हैं ना, वो सब यम नियम में आता है। तो वो तो सबसे पहले है। और वैसे भी कई कहते हैं ना, अगर शरीर तंदुरुस्त होगा तो मन शक्तिशाली बनेगा, पर बाबा कहते नहीं। वो क्या कहते दुनिया में, जो आसन प्राणायाम सिखाते, कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड रखना है तो पहले बॉडी को हेल्दी बनाओ, स्वस्थ बनाओ। बॉडी हेल्दी होगा तो फिर आपके मन में एकाग्रता भी आएगी, ये भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि विज्ञान इसको नहीं मानता, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, ये तो प्राणायाम सिखाने वालों ने कहा। विज्ञान क्या मानता है कि 80% से भी अधिक जो शरीर के रोग है वो मानसिक है, वो मन से शुरू होते हैं। जो शरीर के भी रोग है ना, वो मन के कारण है। आज जितनी मानसिक बीमारियां है ना दुनिया में, शारीरिक बीमारियां भी नहीं होगी, मानसिक, चिंता, भय, अभी डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती जा रही। शुरुआत तो मन से ही होती है ना, और फिर उसका असर तन पर आता है। तो इसीलिए पहले किसको ठीक करना है, तन को या मन को? मन को ठीक करना है। तो 80% बीमारियां आप आएगी नहीं, क्योंकि मन को ठीक किया। तो इसीलिए बाबा ने आते ही जो हमें ज्ञान दिया, जो बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं, ये स्वदर्शन चक्र का ज्ञान दिया, तुम क्या थे, क्या बन गए, अब फिर से वही बनना है, अब फिर से वही बनना है, कोई नया नहीं काम है, नई बात नहीं कर रहे हो। इसीलिए और कैसे परिवर्तन करना है, सोच में परिवर्तन में क्या लाना है, सबसे पहले आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया, आत्मा का ज्ञान। और जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिला, हमारी सोच में परिवर्तन आ गया। जब बाबा ने कहा ना, आत्मा देखो, हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ आत्मा देखो, ये इतना बड़ा सोच में परिवर्तन लाता है। क्योंकि देह अभिमान के कारण हम देह को ही देखते आए, और बाबा क्या कहते हैं, देह को देखो ही नहीं, बस अगर देखो तो हर एक के मस्तक पर, भ्रकुटी पर आत्मा चमक रही है, बस वही देखो। बाबा तो वही देखते हैं ना हम बच्चों में, बाबा तो वही देखते हैं। तो हमें भी यही कहते हैं कि सबके मस्तक पर देखो, और देखो बाबा क्या कहते हैं, अगर नीचे देखेंगे ना मस्तक के नीचे, तो फिर तो साईं बहुत इतनी बड़ी दुनिया है, क्योंकि हर एक का अलग अलग है शरीर, हर एक का अलग अलग शरीर है। कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, और वो तो है ही, लेकिन चेहरे के वो जो बनावट में भी अंतर है। आप एशिया में जाइए जहाँ चाइनीज लोग ज़्यादा है, तो उनकी आंखें कैसे होती है, बादाम बादाम जैसी, और भारत में आंखें कैसे होती है, नहीं बड़ी बड़ी, वो बादामी जैसे, वो ऊंच बड़ी आंख कर ही नहीं सकते हैं ना चाइनीज लोग, ये जापानीज लोग आप ऐसे ऐसे ही देखते हैं कहीं तो उनकी आंखें बोलते हैं बादामी आंखें, बादाम जैसे ना बादाम वैसे। तो आंखों में कितना अंतर, शेप में अंतर। फिर नाक देखो, कईयों के मोटे मोटे नाक होते हैं, कईयों के इतने पतले पतले होते हैं, तो होता है, तो कितना अंतर। तो कहेंगे इसका नाक देखो कितना मोटा है, इसकी आंखें देखो कैसी है। फिर और नीचे आओ तो होंठ, होंठ किसी के बहुत मोटे मोटे होते हैं और किसके तो एकदम पतले होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। फिर और नीचे आओ गर्दन, तो किसी की इतनी ऊंची गर्दन होती है, किसी की इतनी छोटी होती है। अब उसके और नीचे आओ तो रजो तमो, हाँ, और दुनिया ही बिल्कुल दूसरी हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो सब देखो ही नहीं, किसको देखो, हाँ, आप मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखो, मस्तक मणि बस, क्योंकि ये मस्तक सबका एक जैसा है, मस्तक सबका फ्लैट है बिल्कुल सीधा, हाँ, तो इसीलिए सबका एक जैसा है। बाकी हाँ, जिसके बाल बहुत है तो अलग बात है, या टकला है तो अलग बात है, थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन मस्तक तो सबका एक है। तो इसीलिए अगर एक रस अवस्था बनानी है, एक एकाग्रता लानी है, एक शब्द को अंडरलाइन करना है, तो जो एक जैसा है बस उसी को देखो। और आत्मा तो सबकी एक स्टार है, ज्योति है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो इतना तूफान आता है, देह अभिमान का आकर्षण आता है या रिपल्शन आता है, एक होता आकर्षण, दूसरा था रिपल्शन, दूर जाना। जो उस दिन भी परसों भी बाबा ने अव्यक्त जो वरदान है उसमें बताया, पहले तो किसको देखा तो आकर्षण होता था, क्योंकि देह की तरफ आकर्षण, या तो आकर्षण होगा या तो रिपल्शन होगा, हाँ इनसे बात नहीं करनी है तो दूर हट जाएंगे। अभी जब हम देखते हैं ना आकर्षण है ना रिपल्शन है, माना ना आकर्षित होते हैं ना दूर जाते हैं, क्या करते हैं, हाँ, उनके ऊपर जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा कर पाए तो हमको, हम रिपल्शन करते हैं, इनसे बात नहीं करनी, तो बहुत गुस्सा करता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, उनसे नफरत नहीं करनी है, लेकिन उस दिन वरदान में बाबा ने क्या कहा, दया आनी चाहिए, रहम करना है। क्यों गुस्सा उसको आया, क्योंकि आत्मा कमजोर है। तो अब अगर उसकी आत्मा कमजोर है तो उस पर दया करनी चाहिए या उस पर गुस्सा करना चाहिए, हाँ? अब एक छोटा बच्चा है, अब डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा रहा है, कमजोरी है तो उसको थोड़ा इंजेक्शन लगा रहा है, ताकत की इंजेक्शन। अब वो अचानक चिल्लाता है जैसे इंजेक्शन लगाई, और चिल्ला करके वो टांगे ऐसे चलाता रहता है, और हो सकता है डॉक्टर को ही पेट में लात मार ले। अब डॉक्टर क्या उसको मारेगा, तुमने मेरे पेट में लात मारी, वो क्या करेगा डॉक्टर, बच्चा है, हा? उसको दर्द हुआ तो वो क्या करेगा, तो डॉक्टर क्या कहेगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप एक सेकेंड, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो किस कितना प्यार लगता है, गुस्सा थोड़ी आता है, पर हमको किसी ने कुछ कह दिया तो क्या समझता है अपने आप को, गुस्सा आया तो बाबा क्या, बाबा ने क्या कहा, दया आए, क्योंकि वो कमजोर है, दया आए और रहम आए कि हम तो आत्मा शक्तिशाली है, इसको शक्तिशाली बनाना है। अब कोई पागल व्यक्ति रास्ते पर चल रहा है और आप वहां से गुजर रहे, आपको कहेगा ए क्या क्या गाली देगा, तो आप भी गाली देंगे क्या, आपको क्या लगेगा, बेचारा पागल है, पागल हो तो रास्ते में घूमते रहते, शराब पिए हुए, पता नहीं क्या क्या। तो आपको दया आएगी या गुस्सा आता है, दया आती, क्योंकि आप गुस्सा करेंगे तो आप पर पता नहीं क्या कर देगा। दया आती है। जानवरों पर भी हम देखते हैं, हाँ, बहुत उनको प्यार चाहिए, दया चाहिए। वो सांप भी आपको कुछ नहीं करेगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो, पर आपने अगर किया तो वो तो अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता है, पर जब तक आपने कुछ नहीं किया तब तक वो भी कुछ नहीं करेगा। या हमारे बंदर आते ना, ये बंदर आते हैं, अब वो बंदर को आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो, कुछ नहीं करेगा, पर जैसे ही आपने उसको किया, वो बहनों को भी पता झपटता है, भाइयों से डरता है, लेकिन बहनों को तो एकदम से ऐसे दांत दिखाएगा, ऐसे आंख दिखाएगा, बात मत पूछो। अनुभव है ना, यहाँ के बंदरों का अनुभव है, आप कुछ नहीं करो तो वो भी कुछ नहीं करेंगे, तो सीधे साधे है। यहाँ के बंदर बहुत शांत है, यूपी में जाओ या कहाँ पता नहीं, उड़ीसा में भी बहुत बंदर है। मुझे याद है पुरी में मैं गई थी, तो हम रात को गए थे, तो कहा वहाँ तो मंदिर खुला है, आप कभी भी जा सकते हैं। तो हमने देखा वो पुरी का जो मंदिर जगन्नाथपुरी, वो बंदर लाल मुंह वाले बंदर, इतने बंदर थे रात को, सब सोए हुए थे और सब एक दो के कंधे पर सिर रख करके सोए हुए थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वो इतने सारे बंदर चारों ओर घूमते रहते हैं। तो परंतु वो लाल मुंह वाले कहते बड़े खतरनाक होते, यूपी में जाओ वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आप एक पकड़ ले अगर आपको तो आपका सब कुछ छीन लेंगे। हम गए थे क्या हरिद्वार गए थे, वहाँ वो बहुत लाल मुंह वाले बड़े गंदे होते, बहुत तीखे होते, ये काले मुंह वाले अच्छे हैं। तो कई ये तो लंगूर है, तो कई लोग आते हैं ना यहाँ, वो रास्ते में तो बंदरों को देखते हैं, तो वो कहते हैं ना आप लोग ब्रह्मा कुमारी या माउंट आबू में इतनी तपस्या करते हो ना, इतनी शांत रहती हो, तो इसलिए बंदर भी यहाँ शांत रहते हैं। बंदर भी देखो बैठे रहते हैं, देखते ना जब आप ऊपर आते हो नीचे जाते हो, शांत रहते हैं। लेकिन कहने का भाव है कि देखो, हाँ, बाबा आकर के हमारी सोच में परिवर्तन करते हैं, और जैसे ही ये परिवर्तन किया कि आप एक आत्मा हो और सबको आत्मा देखो, और केवल आत्मा देखो नहीं, आत्मा शांत स्वरूप है। मेरा स्वधर्म तो शांति है, पर आपका स्वधर्म भी शांति है, तो दया आती है, रहम आता है, क्योंकि गुस्सा है माना अशांत है, वो आत्मा बहुत कमजोर है। अगर वो शक्तिशाली होती तो गुस्सा नहीं करती, पर गुस्सा करती है अपनी आत्मरक्षा के लिए। अगर हम देखें तो जो झूठा व्यक्ति होगा उसको गुस्सा आएगा, जो सच्चा व्यक्ति है उसको गुस्सा नहीं आएगा, क्या भाई देख लो हम नहीं है, देखो आप हम तो, हमने तो कुछ नहीं किया। पर जो झूठा होगा ना उसको गुस्सा आएगा, बिल्कुल ऐसा होता है। ये CID ऐसे ही तो पकड़ते हैं, ऐसे ही पकड़ते हैं। अभी फ्रांस में कितना बड़ा हंगामा हो गया, अभी मोदी जी वहां है फ्रांस में, तो बताते हैं कि वहां पर मुसलमानों को पनाह दी गई, ये कहां से आए थे उनको पनाह दी, अब फ्रांस ने पनाह दी, काले लोग होते ना वहां, तो वो पनाह उनको तो दी। अभी अचानक क्या है, वो पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति काला, तो वो उसको रोका, वो रुका नहीं और वो भागा, तो जैसे वो भागा तो उसको बंदूक चलाई, वो वही मर गया। तो जैसे मर गया वो बापड़े सारे काले लोग, वो जिन्हों को शरण दिया फ्रांस ने, वो काले लोगों ने इतनी धमाल मचा दी सारे फ्रांस में, जो बात मत पूछो, क्योंकि वो मेरे हमारे जैसे काले को क्यों मारा। लेकिन जरूर वो कुछ होगा तभी तो भागा, भागा क्यों, भागना नहीं चाहिए भाई, नहीं है ठीक है ले लो ना, देखो अब रास्ते पर आपको पुलिस रोकती है, अभी आपका अगर स्पीड ज्यादा है तो चलो फाइन भरना है, हेलमेट नहीं है, बेल्ट नहीं है, आपको आपको पकड़ा तो आपको देना पड़ेगा, पर आपको पड़ा हुआ है, सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है, कागज सब ठीक है, चलो पूछ भी लेगा, आप कोई लड़ेंगे थोड़ी उससे, क्या करेंगे भाई देखो है सब है, कुछ ऐसी बात ही नहीं, क्योंकि अंदर में सच्चाई है। तो गुस्सा भी तब आता है जब अंदर में कोई खोट है, और वो खोट क्या है, या तो है जरूर गलती, पर वो छिपाने लिए दिखाते कि हम ठीक है। या तो अहंकार है, कोई ना कोई विकार जरूर है, और ये सारे विकार एकदम जुड़े हुए, ये सब जुड़े हुए, एक है तो दूसरे भी आ ही जाएंगे। इसीलिए ऐसे नहीं एक है तो दूसरा नहीं होगा। इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, ऐसे नहीं एक एक विकार को जीतो, चलो पहले काम को जीतो, फिर क्रोध को जीतो, फिर लोभ को जीतो, फिर मोह को जीतो, नहीं। अगर जीतना है तो सब एक साथ जीतने पड़ेंगे, एक साथ, अलग अलग नहीं जीते जा सकते, क्योंकि एक को जीता फिर आ जाएगा, फिर वो चार तो बैठे ही हैं, फिर वो एक पांचवें को ही बुला लेंगे वापस। जैसे रावण के लिए दिखाते हैं ना, एक सिर को काटा तो वो वापस आ गया। तब विभीषण ने क्या कहा कि हे राम, श्री राम, ये ऐसे नहीं मरेगा रावण। कैसे मरेगा, कैसे मरेगा रावण, उसकी नाभि में मारो, नाभि। तो परिवर्तन कैसे आएगा, वो शुरुआत कहाँ से करनी है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, चेकिंग हम अपनी करते हैं, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये खामी है। ये तीन चीजें, कमी, कमजोरी और खामी। अगर कमी है तो भरना है, भाई ये कमी है तो ये भरनी है। तो कोई कमजोरी है तो उसको, हाँ, उसको अंदर में शक्ति देनी है। कमजोरी है तो कमजोर व्यक्ति को तो शक्ति देनी है, कमी है तो भरनी है। और कोई खामी है, माना कोई त्रुटि है, तो वो तो निकालनी है। तो कुछ निकालना है, कुछ भरना है, कुछ जमा करना है। तो इसीलिए बाबा कहते उसके लिए क्या करना होगा, पहले अपनी सोच को बदलना होगा खाली। और उस सोच में भी चेकिंग केवल नहीं, बाबा कहते चेकिंग के साथ चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। अब खाली चेकिंग कर ली, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, ऐसे चलो चेकिंग तो कर ली, और चेंज कैसे होगा। तो परिवर्तन करने की क्या विधि है, चेंज कैसे होगा। अगर कोई बहुत व्यक्ति अशांत है, अब उसको शांति देनी है, उसको कैसे हम शांति देंगे, क्या कहेंगे उसको। ये नहीं कहेंगे तुम अशांत नहीं हो, तुम अशांत नहीं हो, नहीं, क्या कहेंगे उसका ऑपोजिट, तुम कौन हो, एक शांत स्वरूप आत्मा। हम जो कमेंट्री कराते हैं ना, कमेंट्री में ये थोड़ी है मैं दे नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, ऐसे से इससे परिवर्तन नहीं आएगा। पर मैं क्या हूँ वो कहने से परिवर्तन आएगा। मैं अशांत स्वरूप नहीं हूँ, अगर ये कहा तो पहले अशांत तो होंगे ही। अशांत स्वरूप नहीं हूँ माना अशांति को पहले याद किया ना, तो हमें अशांति को थोड़ी याद करना, हमें तो किसको याद करना है, शांति को याद करना है ना। एक एक चुटकुला बताते हैं, तो कहते हैं एक जो एक व्यक्ति था, भगत था, वो अपने गुरु के पास गया, तो गुरु को कहता है, गुरुजी मेरा, मेरे अंदर मेरा मन बहुत भटकता है, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं, मेरा मन शांति नहीं रहता है। तो गुरु ने उनको मंत्र दिया, अच्छा जब आपका मन भटके ना उस समय ये मंत्र जाप करना, लेकिन, फिर लेकिन बोल दिया, लेकिन जब ये मंत्र आप जाप करो, ये मंत्र तब काम करेगा जब आपको बंदर याद नहीं आना चाहिए, समझ गए ना, बंदर याद नहीं आना चाहिए। अगर बंदर याद आ गया ना उस समय, तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, आपका मन भटकता ही रहेगा। अब उसने अंदर मंत्र तो जाप किया, बंदर याद नहीं आना है, बंदर याद नहीं आना, तो क्या होगा, हैं, क्या होगा भाई, सबसे पहले बंदर याद आएगा। अब बंदर याद आ गया तो कहाँ पर मन लगा ना, वो मंत्र में भी कोई मन नहीं लगा। याद नहीं करना ऐसे नहीं कहना, बच्चे को भी कहो ना, बेटा ये नहीं करना, हो कहेगा करूंगा, क्योंकि क्यों मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, क्या है उसमें, बच्चे वहां नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, क्यों मना कर रहे हैं, बच्चे से भी चलो कोई ब्लेड है हाथ में या कुछ ऐसा चाकू है, अब उसको कहते हैं ये चाकू लाओ, ये चाकू लाओ, क्यों लाओ, क्यों दो, वो कहेगा क्यों दो, आप कहेंगे ये लगेगा, लगेगा, उसको तो नहीं लग रहा है, वो तो पकड़ के रखा है। केवल ऐसे कैसे ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ऐसे कहने से वो दे नहीं देगा, पर उसकी जगह क्या करो, कुछ उसको अच्छा दो और कहो देखो ये उसे और अच्छा है, या ये उसे और अच्छा है, ये चीज छीछी है, पर ये छीछी कहने से वो देगा नहीं, आप उनसे और अच्छी चीज दो, वो अच्छी चीज जैसे दिखाएंगे और उसके गुण बताएंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, तो जो उसके हाथ में है वो क्या करेगा, अपने आप देगा, अपने आप देगा, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अच्छी चीज देख रहा है ना। तो इसलिए देखो बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ कई बार बाबा हमको कहते हैं बच्चे ये मेरे में योग लगाओ, ये करो करो, कितना बच्चे इस योग से तुम्हारे विकर्म विनाश, कितनी ऊंची बातें बताते, कितनी ऊंची बातें, परंतु फिर भी बच्चे मानते नहीं है, फिर भी भूले करते रहते हैं, फिर भी मन नहीं लगाते, मेहनत नहीं करते याद की। तो फिर बाबा कहते हैं अच्छा अगर बाबा को याद नहीं कर सकते हो तो फिर स्वर्ग को याद करो, बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, प्राप्तियों को याद करो। तो जैसे प्राप्तियों को याद करेंगे, अपने आप प्राप्तियां कराने वाला कौन है वो याद आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज, चेक किया कि ये मेरे अंदर कमजोरी है, मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर सहन शक्ति होगी ना तो मैं सबको रिस्पेक्ट दूंगी, सबको रिस्पेक्ट, परंतु सहन शक्ति नहीं है तो हम सबको गुस्सा भी कर देंगे, सहन शक्ति तो है नहीं। तो सबको अगर मुझे रिस्पेक्ट देना है तो उसके लिए सहन शक्ति बहुत जरूरी है। जो बाबा कहते हैं रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, सम्मान दो सम्मान लो, पर वो कैसे हम सम्मान दें, कैसे हम अपने अंदर सम्मान रखें अपने लिए, उसके लिए हमारी सोच बहुत ऊंची चाहिए। कई कहते बहन जी मेरे अंदर सहन शक्ति है ही नहीं, तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो बाबा कहते उस समय अपनी सोच को बदलो, यही चेक एंड चेंज। अगर मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है तो क्या विचार मन में लाएं जो सहन शक्ति आए और गुस्सा ना आए, सबसे पहले यही सोचो। कई प्रकार की सोच है, जैसे वो होम्योपैथी में डोज देते हैं ना, ये जितना है बस इतना डोज लेना है, तो वो डोज देते हैं होम्योपैथिक पिल्स में। तो इसीलिए बाबा कहते ये भी एक डोज है, सबसे पहला डोज हल्का डोज होता है, वो हल्का डोज कौन सा है, सहन शक्ति लाने के लिए। कोई बात नहीं, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इनका ये पार्ट है, इनका ये पार्ट है, अब ये पार्ट है तो जरूर यही पार्ट बजाएगा ना, इसका पार्ट है ड्रामा में। अब फिल्म देखने जाते, कोई का विलियन का पार्ट है, कोई का कॉमेडियन का पार्ट है, ये क्यों ऐसे करता है ऐसे थोड़ी कहेंगे, इसका पार्ट है, अब वो पार्ट बजा रहा है ड्रामा में, सब एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, इसका ये पार्ट है। परंतु फिर भी वो सहन शक्ति नहीं आती है, गुस्सा आ जाता है, तो उस समय क्या सोचो, अब थोड़ा उनसे हायर डोज, उस समय क्या सोचो, कोई मेरा हिसाब किताब होगा इसका, किसी जन्म क्या, वो चुप हो गया, ऐसे सोच सकते क्यों किया, ऐसे आएगा या क्या आएगा, किसी जन्म का हिसाब किताब था, हमारी सोच ही बदल जाती है, ज्ञान है ना हमें, दुनिया में तो क्यों 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 ही बोलते रहते हैं, बाबा क्या कहते हैं ये क्यों क्यों की क्यों खत्म करो, ये क्यों मत लाओ, क क क क क्यों कब कहाँ कैसे, गुलजार दादी यही कहती थी, गुलजार दादी की विशेषता ये टॉप, हाँ हाँ वो नेक्स्ट पॉइंट। तो पहला है कि इसका ये पार्ट है, अब दूसरा कोई अपना पार्ट बजा रहा है, पार्ट वो अपना याद कर रहा है, हम थोड़ी इंटरफेयर करेंगे, उसका ये पार्ट है, फिर दूसरा बताया कि आप क्या सोचो, कोई मेरा कर्म इसका हिसाब किताब है, और वो चुप्तू हो रहा है तो खुशी होनी चाहिए। चुप्तू हो रहा है, आपके सिर पर किसी कर्जा है, आपने किसी से लिया है, अब वो आ गया आपके पास मांगने के लिए, और आपके पास पैसा है, देना है, बोझ तो है ना, देना है, आज नहीं तो कल तो देना ही है। और आप कहेंगे ये क्यों आया, क्यों आया, आएगा, कर्जा है तो देना है ना, मकान मालिक है वो मांगेगा ना कर्ज किराया आपसे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे मकान मालिक क्यों आया, तो कर्जा है आपके ऊपर तो देना है, खुशी खुशी दो, हाँ क्योंकि पता है कि हाँ देना है तो ये कंपलसरी है, तो इसलिए हिसाब किताब चुकता हो रहा है। अरे क्या हो रहा, क्या हो रहा, सॉरी सॉरी, इसको कुछ होता है क्या, हाँ तो फिर क्यों बैठी है, ले जाओ ले जाओ, होश में है ना, होश में है ना, बेहोश में है तो नहीं पीने का, कोई बात नहीं, ठीक है इसको ले जाना है, दोनों डॉक्टर है साथ से। तो इसको जाना है या क्या करना है, नहीं क्या हो क्या रहा है, नहीं तो आना नहीं चाहिए था ना क्लास में, चलो ठीक है सब ठीक है, लेके जाना है, वो ज्यादा भी नहीं पिलाओ, हो गया कि नहीं, ओके अच्छा चलो, नहीं बुखार है तो फिर नहीं आना चाहिए ना, कमजोरी होगी, अच्छा ठीक है छोड़ो, हाँ अभी इस पर ध्यान दो। तो दूसरा डोज है थोड़ा उनसे हायर डोज कि मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, फिर तीसरा इससे और आगे डोज, इनसे आगे क्या डोज है, हा? जो वो अच्छा हुआ उसने ऐसे क्या अच्छा हुआ, इनसे इनसे ऊंचा डोज है कि ये आत्मा कमजोर है, उसको उस हिसाब से देखो, इसको शक्ति की जरूरत है, इसलिए उसको शक्ति देनी है, उसको अच्छी तरह से दृष्टि दो, स्नेह की शक्ति दो, स्नेह की दृष्टि दो, अब जैसे बीमार है थोड़ा उसको छुआ, अच्छा पानी दो, उसकी पीठ को ऐसे दबाओ या जो कुछ सिर को दबाओ, मतलब ये रिस्पेक्ट है, कोई गिर रहा है उसको उठाओ, ऐसा भी गिर रहा है तो गिरने दो, इसीलिए वो दया जिसको बाबा कहते हैं दया आए या रहम आए, गुस्सा नहीं आए, तब कहेंगे सहन शक्ति, अगर सहन कर लिया इस हिसाब से कोई क्या मेरा हिसाब किताब, क्या मेरा सिर दर्द, क्या मेरे कोई सहन करना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही मरना है, अगर ये ऐसे कह दिया तो क्या होगा, ये सहन शक्ति थोड़ी है, सहन शक्ति नहीं होती है, इसीलिए या तो गुस्सा आता है या तो रोना आता है, ये दोनों बातें आती है, कई समझते ना कि हमको तो मैंने गुस्सा नहीं किया पर रोना जरूर आया, तो रोना क्या है, बहनों का गुस्सा आंखों से आता है और भाइयों का गुस्सा मुंह से आता है, ऐसे ही होता है ना, कई बहनों का भी आता है मुंह से पर भाइयों का आंखों से नहीं आता है, आता है क्या, रोना आता है भाइयों को, इतना नहीं आता, मुंह लाल लाल हो जाता है, मुंह में गुस्सा आता है, आंखों में आ जाता है ना, खैर तो इसको कहते हैं सहन शक्ति, ऐसे नहीं चलो सामने तो हमने जवाब नहीं दिया, मैंने सहन कर लिया, लेकिन कमरे में जा करके वो तकिया सिर पर रख करके अंदर ही अंदर रोया, ये थोड़ी सहन शक्ति है। सहन शक्ति बाबा क्या कहते हैं, एक कान से चलो सुना अभी दूसरे कान से निकाल दिया। जबकि कोई आपसे लेना देना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है और आपके अंदर कोई ऐसी बात है ही नहीं, तो फिर उसका असर होना भी नहीं चाहिए। चलो गया गुस्सा ठीक है। तो बाबा हम बच्चों को युक्ति रच दिखा बताते हैं कि क्या सोचो, और जब सोच हमारी श्रेष्ठ होगी तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, ये सोच नहीं, पर मुझे करना क्या है, करना क्या है। इसलिए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, यही युक्ति है अशांत अशांति मिटाने के लिए। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, यही तरीका है नफरत मिटाने की मिटाने के लिए। कोई भी दुख है, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूं, यही है वो दुख को मिटाने का साधन। बस सोच में परिवर्तन, बाबा हमसे यही चाहते हैं, सोच में परिवर्तन। इसको इसलिए बाबा ने कहा ना, पॉजिटिव थिंकिंग, उस दिन भी अव्यक्त मुरली में था, पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं, विदेशों में बहुत कराते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। तो दादी जानकी ने एक बार सुना किसी का पॉजिटिव थिंकिंग, क्या सोचो क्या सोचो, तो दादी ने उसको बुला के कहा क्या सोचो, पर जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है सोच में परिवर्तन कैसे आएगा। वी वैल्यूज का ज्ञान देते हैं, वैल्यूज 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 किस में होती है, आत्मा में होती है ना, पर आत्मा का ज्ञान ही नहीं देते। और वो जो वैल्यूज है उनका जो दाता है वो तो परमात्मा है, परमात्मा का कोई परिचय नहीं देते, खाली वैल्यूज की बातें करते। तो वैल्यूज आएगी कैसे, जब तक आत्मा की शक्ति नहीं होगी परमात्मा से योग नहीं होगा। आत्मा की शक्ति होगी तो चलो अंदर से जागृति आएगी ना, कहाँ से आएगी वैल्यूज। वैल्यूज कोई चीज थोड़ी है जो आपको कोई दे देगा, आपको अपने अंदर से जगानी है, वो वैल्यूज है आपके अंदर। तो मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर शांति है, लेकिन उस शांति के स्रोत के साथ, स्रोत के साथ मेरा कनेक्शन हो और मैं स्वयं वो स्वरूप हूं, तो एक सेकंड में शांति का अनुभव होता। इसीलिए हम क्या बताते, शांति का अनुभव कैसे करना है। अगर शांति है तो अभी है, अभी नहीं है तो कभी नहीं है। एक सोच की दूरी पर है बस शांति, जिसको बाबा कहते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं शांति के सागर शिव बाबा की संतान, मैं शांति धाम का वासी। हम यही सिखाते हैं ना। तो ये बाबा कहते हैं दूसरों के लिए क्या पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स, खुद के लिए नहीं है क्या। तो सोच में परिवर्तन जैसे ही लाया तो हमारी वाणी में कर्म में ऑटोमेटिकली आएगा, कमजोरी अपने आप खत्म होती जाएगी, भरती जाएगी। और बाबा ने और भी बहुत सुंदर युक्ति बताई, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए ना, उसी समय कहो नहीं। गाड़ी में ब्रेक लगती है, ब्रेक बहुत जरूरी है, खास जब चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो यही उनको कहते, पहले ब्रेक चेक करो, क्योंकि अचानक अगर कुछ हुआ, ब्रेक फेल हो गई चढ़ाई पर, तो क्या होगा, जाएंगे नीचे। इसीलिए ब्रेक को मजबूत करो। और ब्रेक हमारी कौन सी है, ड्रामा, ये हमारी ब्रेक है। ब्रेक कैसे ड्रामा है, क्योंकि ड्रामा के अंतर्गत पांच बातें आती है, ये ड्रामा की ब्रेक के रूप में काम करती है। पहला, ड्रामा में जो कुछ होता है ये नथिंग न्यू, ये कुछ भी नया नहीं है, इसीलिए आश्चर्य की तो बात ही नहीं है। हम लोगों को आश्चर्य था, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया, आश्चर्य खाते। और कोई भी बात में आश्चर्य बाबा कहते कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साक्षी दृष्टा रहना है माना आश्चर्य नहीं ना, जो आश्चर्य खाएगा माना साक्षी दृष्टा कहाँ है। कुछ भी हो पर आश्चर्य खाया माना साक्षी नहीं है, उसका प्रभाव पड़ गया। इसलिए कुछ भी नया नहीं है। एक सेकंड में सोच पे परिवर्तन आ गया तो आश्चर्य खत्म। दूसरा, जो कुछ हुआ उसमें कोई कल्याण है। कल्याण अगर है ये समझा तो क्या होगा, अंदर में जो उसका दुख आता है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि कल्याणकारी है। हमें इस समय पता नहीं चलता है लेकिन अवश्य कोई ना कोई कल्याण होगा। इसीलिए कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। हिसाब किताब चुप्त हो गया, इसलिए कल्याणकारी है ना। तो पहला है नथिंग न्यू, तो कोई आश्चर्य भी नहीं होगा, कोई प्रश्न भी नहीं उठेगा। क्यों क्यों प्रश्न भी तब उठता है जब कोई नई बात है, तो आश्चर्य भी नहीं होगा। फिर कोई कल्याण है तो कोई दुख भी नहीं होगा। कल्याण है तो अंदर में डर भी नहीं लगेगा, हाय पता नहीं क्या होगा क्या होगा, नहीं। कल्याण है, जो होगा कल्याणकारी होगा, तो ना दुख होगा ना डर होगा ना आश्चर्य होगा ना कोई प्रश्न उठेगा, और आगे क्या होगा उसकी चिंता भी नहीं होगी। जो होगा अच्छा ही होगा ना, कल्याणकारी है, अच्छा ही होगा। इसलिए ड्रामा की 5 बातें सदा याद रखो। पहले नथिंग न्यू, दूसरा सब कुछ कल्याणकारी है, तीसरा सब कुछ एक्यूरेट है, यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए था, यही सही है, यही सही रूप है। अब यही सही रूप है तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये भी तो प्रश्न नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए ये भी नहीं सोच चलेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि हम ड्रामा से ज्यादा होशियार है, ड्रामा कल को पता है ना क्या होना चाहिए। तो ये 3 बातें हैं और इसके आधार से 5 बातों में आप फ्री रहेंगे। ये 3 बातें ड्रामा की, एक नथिंग न्यू, दूसरा सब कुछ कल्याणकारी, तीसरा सब कुछ एक्यूरेट है, सब सही है, एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। ये 3 से क्या होगा, 5 बातें आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। पहला, कोई प्रश्न नहीं उठेगा किसी भी बात में। दूसरा, कोई भी आश्चर्य नहीं होगा किसी भी बात में। और तीसरा, कोई दुख नहीं होगा किसी भी बात में। चौथा, कोई डर नहीं लगेगा किसी भी बात में, हाय क्या होगा क्या होगा, नहीं। और पांचवा, कोई चिंता भी नहीं होगी, क्या होगा अच्छा होगा। तो न प्रश्न, न आश्चर्य, न दुख, न डर, न चिंता, इन 4-5 ही बातों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये है अपने जीवन में परिवर्तन लाने की विधि। कहाँ से शुरू करेंगे, सोच से, और उससे देखो सारी बातें आ जाएगी। हमारी भावना बदल जाएगी, हमारी वृत्ति बदल जाएगी, हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हमारे बोल बदल जाएंगे, हमारे कर्म बदल जाएंगे, हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। जिसको बाबा ने कहा ना उस दिन अव्यक्त मुरली में, राजयोग के लिए हम क्या कहते हैं, ये मेडिटेशन इज आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है। तो यही तो कला है, और ये कला जान गए तो कैसा होगा हमारा जीवन, कितना श्रेष्ठ जीवन होगा। और सचमुच संगम युगी जीवन दी बेस्ट, हाँ? देवताओं से भी ऊंचा जीवन। चढ़ता है इतना नशा, चढ़ता है नशा, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं है। बाबा कहते पता नहीं, पता नहीं कहा तो पता कट जाएगा, हाँ? इसलिए पता नहीं नहीं, या तो ये होता तो, ये तो पता नहीं, ये सब बाबा कहते ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है, ये भी व्यर्थ सोच है। तो व्यर्थ खत्म, यहाँ भट्ठी से ये खत्म करके जाएंगे, ब्रेक पावरफुल लगाएंगे, तो नो, और दूसरा एक है नो नो, और दूसरा है दूसरा क्या है जो बाबा ने उस दिन भी कहा, वाई 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 नहीं, फ्लाई फ्लाई, छोड़ो तो छूटो, कोई गुस्सा कर रहा है वहां से हट जाओ, आपको भी वहां खड़े ही नहीं रहना है, अगर नहीं है सहन शक्ति तो खड़े ही मत रहो ना, चले जाओ वहां से, ये तो आप उसने दो का, आपने चार का, उसने आठ का, तो शुरू हो जाएगा शांति। तो हमारे अंदर ये परिवर्तन शक्ति आए तब हम कहें कि हमने ये ब्राह्मण जीवन सफल किया, हमारी प्रारब्ध बहुत बनी है, भाग्य बहुत बनाया है, पुण्य बहुत कमाया है ना, क्या कहेंगे। अभी भी अगर शरीर छूट जाए तो क्या कहेंगे, बाबा से कई पूछते ना, बाबा शरीर छूट जाए तो बाबा बता देंगे कैसी स्थिति है, उस अनुसार प्राप्ति है। तो हर एक सोचे, मम्मा यही कहती थी, मम्मा से किसी ने पूछा ना, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें, तो मम्मा ने यही कहा, हर घड़ी समझो मेरी अंतिम घड़ी है, तो क्या होगा, हा? छोड़ो छोड़ो, बस सदा छोड़ो तो छूटो, झंझटों से, परेशानियों से, दुखों से, अशांति से, आनंद ही आनंद है। एक ड्रामा किसने बनाया था, आनंद ही आनंद, परमानंद, तो सदा ही क्या रहेंगे बहने बताओ, सदा ही परमानंद में, आनंद ही आनंद। फिर आनंद के साथ देखो, जितने भी साधु संत महात्मा है, सबके शब्द जो नाम होते हैं आनंद में समाप्त होते हैं, आनंद के साथ जुड़े हुए हैं, सच्चिदानंद, धर्मानंद, प्रेमानंद, विवेकानंद, दयानंद, आनंद, क्योंकि आनंद की स्थिति में ये वो तब आएगी जब ये सब बातें होगी। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो यहां से कैसे जाएंगे, आनंद ही आनंद, उसी स्थिति में जाना।
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सुंदर सुंदर टिप्स मिली, अनुभव युक्त टिप्स अवश्य आपके जीवन में ये काम करेगी। दीदी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।